अन्योन्याश्रय कालानुक्रम जब अज्ञात पुरुषावशेषों स्तरों सांस्कृतिक कालों तथा पुरास्थलों का कालक्रम किसी ज्ञात पुरावशेष या पुरावशेषों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उसे अन्योन्याश्रय कालानुक्रम कहा जाता है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों मुहरों तथा सिक्कों एवं अन्य पुरावशेषों और पुरानिधियों आदि के माध्यम से इस प्रकार का तिथि क्रम निश्चित किया जा सकता है। सांस्कृतिक संपर्क आक्रमण प्रवजन माइग्रेशन तथा व्यापार आदि के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की समकालिक संस्कृतियों के बीच परस्पर संपर्क सूत्र स्थापित होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। यदि समकालिक दो संस्कृतियों के मध्य टिकाऊ वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ हो तो इस प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार के साक्ष्यों के मूल्यांकन एवं विवेचन में सतर्कता तथा सावधानी की नितांत आवश्यकता है। एकाकी साक्ष्य बहुत प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं होते हैं। जाली अथवा कूट पुरावशेष असमंजस एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। पुरावशेषों के अन्योन्याश्रय कालानुक्रम के महत्व की ओर पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय फ्लिंडर्स पेत्री नामक पुराविद को दिया जा सकता है। पेत्री ने मिस्र एवं फिलिस्तीन में उत्खनन कराया था। मिस्र के पुरावशेषों एवं मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के इजियन सभ्यता के प्रमुख पुरास्थलों पर मिलने के फलस्वरूप पेत्री ने दोनों के समकालिक होने की संभावना प्रकट की थी। कालांतर में गार्डन चाइल्ड और ग्राहम क्लार्क ने भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में विकसित होने वाली सभ्यताओं के पुरावशेषों के आधार पर यूरोप की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के कालक्रम प्रस्तावित किए थे। इराक की प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों से प्राप्त सैंधव लिपि में अंकित मुहरों के आधार पर सैंधव सभ्यता पृष्ठ संख्या 118 का सापेक्ष तिथि क्रम निर्धारित किया गया था। वर्तमान केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी के अरिकामेडु नामक पुरास्थल से उपलब्ध प्रथम सती ईसा पूर्व के प्रथमार्ध के एरेटाइन रोमन मृदभांडों के टुकड़ों के आधार पर दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियों की तिथियां निश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई थी। भू आकृति विज्ञान प्रागैतिहासिक कालानुक्रम के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है। प्रातिनूतन काल की तीव्र उतार चढ़ाव वाली विषम एवं अस्थिर जलवायु का प्रभाव भू आकृतियों के निर्माण पर भी पड़ा है। हिमानियों के स्तरित एवं अस्तरित जमाओं लोयस के मैदानों नदी वेदिकाओं तथा नदियों के अनुभागों आदि भू आकृतियों का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के मानवकृत पुरावशेषों के सापेक्ष तिथि क्रम के लिए आवश्यक है। समुद्रों तथा झीलों के तटों का अध्ययन भी प्रागैतिहासिक काल के सापेक्ष कालक्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नदियों के सोपानों अनुभागों तथा हिमायित क्षेत्रों के प्राकृतिक स्तरों की विवेचना मुख्यतः प्रेक्षण पर आधारित है। ऐसी स्थिति में कोई निश्चित निष्कर्ष उस समय तक नहीं निकालना चाहिए जब तक कि एक विस्तृत क्षेत्र में सघन एवं सूक्ष्म रूप से अन्वेषण न कर लिया जाए। नदियों के सोपानों आदि में सभी कालों के जमाव प्रायः एक ही स्थान पर नहीं मिलते हैं। स्थानीय भू आकृतियों की बनावट के अनुसार एक काल से संबंधित जमाव कुछ स्थानों पर मिलते हैं, अन्यत्र दूसरे कालों के जमाव दृष्टिगोचर होते हैं। इन सभी जमावों के अध्ययन के आधार पर आरेखीय अनुभागों स्कीमेटिक सेक्शन की रूपरेखा तैयार की जाती है। कभी कभी तो ऊपर के स्तर के नीचे के स्तरों से इस प्रकार से मिल जाते हैं कि वे एक दूसरे से मिले हुए से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के स्तरों को तिर्यक संस्तरित स्तर क्रॉस बेडेड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सापेक्ष कालक्रम निर्धारण के पूर्व प्रागैतिहासिकविद को विभिन्न प्रकार के जमाओं के क्रम का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके कालक्रम निर्धारित करना चाहिए। प्रातिनूतन काल के सुदीर्घ काल के वर्षों में व्यस्त करना आसान नहीं अपितु कठिन है, इसलिए इसको भूतात्विक घटनाओं के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रकट किया जाता है। प्राचीनतम काल से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान यूरोप तथा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में हुए हैं, जहाँ के कुछ क्षेत्रों के प्राचीनतम काल से संबंधित भूतात्विक जमाओं के सुंदर अनुक्रम प्राप्य हैं। यूरोपीय और रूसी पुरातत्व वेत्ताओं ने चार हिमकालों तथा उनके अंतरहीन कालों के जमावों से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सापेक्ष तिथिक्रम प्रस्तावित किया है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों में प्रातिनूतन काल के अंतर्गत अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि कालों का क्रम स्वीकार किया पृष्ठ संख्या 119 गया है। प्रागैतिहासिक पुरावशेषों की दृष्टि से ये दोनों महाद्वीप अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन तिथिक्रम की दृष्टि से इन क्षेत्रों में अभी भी बहुत काम होना शेष है। रेखाचित्र 4 भू आकृतियां। भू आकृतियों के आधार पर निर्धारित सापेक्ष तिथियों का क्षेत्र केवल पुरापाषाण काल तक ही सीमित है। भू आकृतियों के अनेक जमावों में तिथि निर्धारण योग्य सामग्री का अभाव मिलता है। एक क्षेत्र की भू आकृतियों का संबंध दूसरे क्षेत्र की भू आकृतियों से स्थापित करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। तथापि अन्य किसी प्रकार के तिथिक्रम के अभाव में भू आकृतियों के माध्यम से निर्धारित सापेक्ष कालानुक्रम का विशिष्ट महत्व स्वीकार किया जा सकता है। पूरा जीव विज्ञान। सापेक्ष तिथि निर्धारण में पूरा जीव विज्ञान की विधि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रातिनूतन काल के पशुओं जैसे हाथी, घोड़े तथा मवेशियों और पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन सापेक्ष तिथि निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत से संबंधित जीवाश्मों की तुलना के आधार पर प्रातिनूतन काल के पुरास्थलों की समकालिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। हाथियों और गैंडों के जीवाश्मों को प्रायः निर्देशक जीवाश्म इंडेक्स फॉसिल्स की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन दोनों प्राणियों में प्रातिनूतन काल में त्वरित एवं सुस्पष्ट परिवर्तन हुए थे। हाथियों में एलिफस मेरिडियोनिलिस का संबंध निम्न प्रातिनूतन काल तथा एलिफस एंटिक्वस का मध्य प्रातिनूतन काल एवं एलिफस प्रीमिजीनियस का संबंध उच्च प्रातिनूतन काल से माना जाता है। भारत में एलिफस नमदिकस का संबंध मध्य प्रातिनूतन काल से माना जाता है। हाथियों के जीवाश्मों के आधार पर प्रातिनूतन पृष्ठ संख्या 120 काल का सापेक्ष तिथि निर्धारण अत्यंत जटिल कार्य है, क्योंकि हाथियों के विकास की कई स्वतंत्र शाखाएं थी। विशाल पशु मेगाफौना अपने आप को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बना सकते थे। जलवायु में उतार चढ़ाव होते ही एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान कर सकते थे। इन्हीं कारणों से सापेक्ष तिथिक्रम के लिए लघु पशुओं माइक्रोमामल्स जैसे चूहे आदि कृंतक रोडेंट्स जीव जंतुओं के जीवाश्मों के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। इन जीवों का सामान्यतः शिकार नहीं किया जाता था। ये जीव शिकारियों के साथ निवास करने वाले प्राणियों के प्रतिनिधि थे। इनके अवशेष पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें निर्देशक जीवाश्म मानकर सापेक्ष तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। प्रातिनूतन काल के हिमकालों एवं अंतर हिमकालों के जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के थे। इस तरह की जानकारी सापेक्ष तिथि निर्धारण के लिए उपयोगी है। प्रातिनूतन काल की विषम जलवायु से पेड़ पौधे भी प्रभावित हुए। वनस्पतियों में टुंड्रा एवं टैगा प्रकार के पेड़ पौधों की प्रमुखता थी। लिचिन, काई, मॉस तथा छोटे आकार के बिलो, स्प्रूस तथा लार्च आदि प्रमुख वनस्पतियां थी। उष्णतर जलवायु के आगमन के साथ पाइन तथा बर्च के पेड़ अस्तित्व में आए। प्रागैतिहासिक काल में मानव तथा पशुओं का जीवन पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर विशेष रूप से निर्भर था। सापेक्ष तिथि निर्धारण करने में इस प्रकार वनस्पतियों के अध्ययन से भी सहायता ली जा सकती है। फ्लोरीन विश्लेषण। प्राणियों के शरीर का सबसे मजबूत एवं सुदृढ़ भाग अस्थियां होती हैं। अस्थियां, बोन्स और उपास्थियां, कार्टिलेक्स मिलकर कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। हड्डियों का निर्माण मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोनेट आदि लवणों से होता है। जमीन में दबी हुई हड्डियों एवं दांतों में भूमिगत जल के संपर्क के फलस्वरूप शनई शनई फ्लोरीन का अवशोषण हो जाता है। हड्डियां जितनी अधिक पुरानी होती हैं, फ्लोरीन की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। रासायनिक विश्लेषण के द्वारा फ्लोरीन की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। एक साथ प्राप्त सभी हड्डियों में प्रायः फ्लोरीन की मात्रा एक जैसी होती है। हड्डियों की किस्मों, विभिन्न गहराइयों में दबे होने एवं पुनर्स्थलों की भिन्नता का प्रभाव हड्डियों में विद्यमान फ्लोरीन की मात्रा पर पड़ता है। यह विधि संदिग्ध मानव अस्थियों एवं जीवाश्मों के परीक्षण के लिए विशेष उपयोगी है। केपी ओकले ने ब्रिटेन के पिल्टडाउन मानव की हड्डियों के फ्लोरीन परीक्षण के पश्चात इसे जालसाजी का एक नमूना सिद्ध कर दिखलाया है। पृष्ठ संख्या 121। इस विधि की अपनी सीमाएं और संभावनाएं हैं। इस विधि से केवल हड्डियों की सापेक्ष तिथि निर्धारित की जा सकती है। हड्डियों, दांतों तथा श्रृंगों में फ्लोरीन की मात्रा में अंतर के कारण तिथि निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। किसी एक पुरास्थल के विभिन्न स्तरों में प्राप्त हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा का तुलनात्मक विवेचन करना बहुत सरल कार्य नहीं है, क्योंकि तापक्रम एवं आर्द्रता का प्रभाव रसायनों की क्रियाशीलता पर पड़ता है। किसी पुरास्थल के स्तरों के विन्यास के निर्धारण में भी यह विधि उपयोगी है। पूरा पुष्प पराग विश्लेषण। पूरा पुष्प पराग विश्लेषण पुरातत्व के लिए सापेक्ष तिथि निर्धारण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। पुष्पधारे पेड़ पौधे तथा घासें अपना वंशक्रम अक्षुण रखने के लिए बीज उत्पन्न करती हैं। बीज उत्पन्न करने के लिए पुष्पों के पुंकेसर, स्टैमेन, परागकण, पोलन, ग्रेन्स उत्पन्न करते हैं, जिन्हें बीजाणु, माइक्रोस्पोरस भी कहते हैं। परागकण प्रायः 0.01 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर आकार के और 10^-9 ग्राम से भी कम भार के होते हैं। एक पराग पुट में अनेक परागकण भरे रहते हैं। प्रत्येक परागपुट बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा तथा अंतः त्वचा इन तीन भित्तियों से घिरा होता है। परागकण एक कोशीय रचना है जो दो भित्तियों से घिरा रहता है। बाह्य भित्ति अपेक्षाकृत मोटी तथा खुरदुरी अथवा कंटकमय होती है, जिसे बाह्य चोल एक्साइन कहते हैं। इसके अंदर की ओर स्थित अंतः चोल इंटाइन एक अत्यंत पतली एवं कोमल भित्ति या झिल्ली होती है। आरंभ में परागकण के अंदर केवल एक ही केंद्रक होता है, जो बाद में परिपक्व होने पर दो असमान केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। बड़े केंद्रक को नलिका केंद्रक, ट्यूब ट्यूब न्यूक्लियस तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक, जेनरेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। अंकुरण के समय जिस कमजोर स्थान को फोड़कर परागकण बाहर निकालते हैं, उसे अंकुरण छिद्र, जर्म पोर कहते हैं। किसी एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण पॉलिनेशन कहते हैं। परागण क्रिया दो प्रकार से होती है, एक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, दो परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में पराग कोश से परागकण सीधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य माध्यम से उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पेड़ पौधों पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पर परागण में जल, वायु, जीव जंतु एवं कीट पतंगे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। किसी भी वनस्पति संकुल क्षेत्र में परागकणों की वार्षिक वृष्टि के समय मात्र एक वर्ग, पृष्ठ संख्या 122 सेंटीमीटर क्षेत्र में हजारों परागकण बिखरे हुए मिल सकते हैं। यदि ऑक्सीकरण अथवा उपचयन ऑक्सीडेशन बहुत कम या बिल्कुल न हुआ हो तो परागकणों के एक बहुत बड़े अंश के सुदीर्घ काल तक परिरक्षित रहने की संभावना है। झील तलों तथा दलदलों, बॉक्स के अम्लीय वातावरण, एसिडिक एनवायरमेंट्स के एनवायरमेंट्स में परागकण सहस्रों वर्ष तक परिरक्षित रह सकते हैं। बलुअर एवं क्षारीय मिट्टी, अल्कालाइन सॉइल तथा जहां आग जलाई गई है वहां पर परागकण प्रायः नहीं मिलते हैं। परागकणों के नमूने एकत्र करने का कार्य पूरा वनस्पति विज्ञान वेत्ता एवं पुराविद दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी उत्खनित अनुप्रस्थ काट या सेक्शन में ऊपर से नीचे तक 5, 10, 20 और 30 सेमी के अंतर में नमूने इकट्ठा किए जा सकते हैं। लगभग 20 घन सेमी क्षेत्र से इकट्ठा की गई सामग्री पराग विश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। नमूनों को एकत्र करते समय अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वातावरण तथा नमूने एकत्र करने वाले उपकरण के संदूषण से बचाव हो सके। छोटे आकार की परख नली जिसमें ढक्कन बंद करने की सुविधा हो, इस कार्य हेतु विशेष उपयुक्त है। बर्मा से खुदाई करके भी पूरा पराग विश्लेषण के लिए आवश्यक नमूने इकट्ठा किए जा सकते हैं। नमूनों के अवांछित तत्वों को प्रयोगशाला में साफ करने के पश्चात विश्लेषण के का कार्य किया जाता है। साफ करने के लिए सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ठंडे तनु घोल 25% में डालकर कैल्शियम कार्बोनेट को दूर किया जाता है। इसके पश्चात सिलिका को साफ करने के लिए नमूने को 48 घंटे तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सांद्र घोल 40% में डालकर रखा जाता है। तत्पश्चात नमूने को आश्रित जल से धोकर साफ करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10% के घोल में डालकर गर्म किया जाता है। अवांछित कार्बनिक द्रव्य को हाइड्रोजन पेराक्साइड के 10-15% के घोल में उबालकर विनष्ट करने के बाद नमूने को शुद्ध जल से साफ किया जाता है। इसके बाद दोबारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 10% घोल में डालकर उबाला जाता है। मिट्टी अथवा चिकनी खड़िया मिट्टी, माल्स मुक्त युक्त नमूनों को भी उपयुक्त विधि से साफ किया जा सकता है। इसके पश्चात ग्लिसरीन की जेली के माध्यम से पुष्प पराग के अपशिष्ट अंश की स्थायी स्लाइड तैयार की जाती है। पराग कणों को उनके मूल आकार से 200 से 600 गुना बड़ा करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के मंच स्टेज पर विश्लेषण के लिए इस प्रकार रखा जाता है कि रखी गई स्लाइड मंच के छिद्र पर रहे, जिससे कि विश्लेषण में सुविधा हो। बीज वाले प्रत्येक पेड़ पौधे एवं घास के पुष्पों के परागकणों का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसलिए परागकणों के विश्लेषण के आधार पर पृष्ठ संख्या 123 वनस्पतियों के विशिष्ट गुण अथवा जीनस, विशिष्ट गण अथवा जीनस को विशेषज्ञ अपेक्षाकृत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कतिपय वनस्पतियों की स्पीसीज की पहचान करना भी संभव है, लेकिन स्पीसीज के उपवर्गों को अलगाना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। पुष्प परागकणों में के विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ के लिए आधुनिक वनस्पतियों के पुष्पों के परागकणों के विषय में यथेष्ट ज्ञान होना अत्यावश्यक है। आधुनिक वनस्पतियों के फूलों के परागकणों की संरचना का विश्लेषण करके उपयुक्त स्पेक्ट्रम एवं आरेख डायग्राम तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात की पूरा परागकणों के विश्लेषण में प्रवृत्त होना चाहिए। स्वीडन के वनस्पति विज्ञान वेत्ता लेनर वॉन पोस्ट ने जब सन 1916 में परागकण विश्लेषण विधि को विकसित किया था, तब इसका उपयोग केवल जंगली वृक्षों तक ही सीमित था। इसके बाद 20-25 वर्षों के अंदर यह विधि उन सभी पेड़ पौधों पर भी समान रूप से लागू हो गई थी जो परागकण उत्पन्न एवं विसरित करते हैं। निरपेक्ष तिथि विधि को कालमापन तिथि विधि भी कहते हैं। जब तिथियां किसी निश्चित पंचांग, उदाहरणार्थ ख्रिस्तीय पंचांग, क्रिश्चियन ईरा के दिनों, महीनों और वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो उन्हें निरपेक्ष तिथियों की संज्ञा दी जाती है। निरपेक्ष तिथिकरण की विधियां प्रायः उन प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है जो मापने योग्य एक नियत दर से घटित होती है। 20वीं शताब्दी के विगत 2-3 दशकों में निरपेक्ष काल मापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप पुरावशेषों के तिथि क्रम में विशेष प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता का समावेश हुआ है। निरपेक्ष कालानुक्रम की प्रमुख विधियों में अनुवर्ष स्तर विश्लेषण, वृक्ष वलय कालानुक्रम, रेडियो कार्बन 14, पोटेशियम आर्गन विधि एवं उष्मा दीप्ति तिथि विधि आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अनुवर्ष स्तर विश्लेषण भू कालानुक्रम से संबंधित निरपेक्ष कालक्रम निर्धारण की एक प्रमुख विधि है। इस विधि को विकसित करने का श्रेय स्वीडन के विद्वान वैरन जेरार्ड दे गियर को है। सन 1878 में स्टॉकहोम के समीपवर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान करके गियर ने इस विधि के माध्यम से भूतात्विक घटनाओं का कालक्रम सौर वर्षों में निर्धारित करने की विधि विकसित किया था। पृष्ठ संख्या 124। प्रतिवर्ष होने वाले क्रमबद्ध युग्मित जमाव को स्वीडिश भाषा में वार्व कहा जाता है। हिम नदियों के हिम के पिघलने के फलस्वरूप प्रवाहित जलराशि के झीलों, खाड़ियों तथा सागरों के स्थिर जल में समाहित होने के कारण युग्मित क्रम में निर्मित एवं निर्मीयमान वार्षिक असाधन सेडिमेंटेशन को अनुवर्ष स्तर अथवा वॉर्व कहते हैं। अनुवर्ष स्तरों के जमाव का निर्माण छोटे छोटे आकार के कणों से होता है। ये कण 1.0 से 0.1 मिमी आकार के होते हैं। हिमनदियों के हिम के पिघलने से प्रवाहित जल में बालू तथा मिट्टी के कण घुले रहते हैं। यह जलराशि जब किसी झील, सागर या खाड़ी के स्थिर जल में गिरती है, तब बालू, मिट्टी आदि सामग्री उस जल में फैल जाती है। भारी एवं वजनी कण पहले और सूक्ष्म तथा हल्के कण अपेक्षाकृत बाद में जल के तल पर संचित होते हैं। इस प्रकार दो परतों का जमाव हो जाता है। अगले वर्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर अवसादन का क्रम पुनः आरंभ हो जाता है। अनुवर्ष स्तर कतिपय मिमी से लेकर प्रायः 30-40 से भी तक मोटे मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष के अनुवर्ष स्तरों के जमाव की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। जिस वर्ष की जलवायु अपेक्षाकृत उष्ण रही हो, उस वर्ष के स्तर के मोटे तथा विस्तृत होने की संभावना हो सकती है। ठंडे वर्ष के अनुवर्ष स्तर का आकार पतला एवं सीमित हो सकता है। वसंत काल के स्तरों का रंग गहरा होता है, इनमें कार्बनिक पदार्थों का प्राधान्य रहता है। ग्रीष्म काल में कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण के फलस्वरूप स्तरों का रंग हल्का होता है। अनुवर्ष स्तरों के नियमित क्रम में संचय के फलस्वरूप प्रतिवर्ष के युग्मित स्तरों की गणना करके संपूर्ण संचय की अवधि का कालानुक्रम निर्धारित किया जा सकता है। हिम नदियों के अंतिम मोरेन प्रायः अनुवर्ष स्तरों के संचय क्रम से अभिन्न रूप से संबद्ध माने जाते हैं। इसलिए अंतिम मोरेन के पीछे खिसकने के साथ अनुवर्ष स्तर भी उसी अनुपात में पीछे खिसकते जाते हैं। अनुवर्ष स्तरों के अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाना संभव है कि कोई अंतिम मोरेन कितने वर्षों तक एक ही स्थान में रहा होगा। अनुवर्ष स्तरों का तिथिक्रम निर्धारित करने के लिए मोरेन के जमाव का संबंध हिमकालों तथा अंतर हिमकालों के जमावों के साथ स्थापित किया जाता है। अनुवर्ष स्तरों के संचय में पुरातात्विक सामग्री का अभाव मिलता है, लेकिन अनुवर्ष स्तरों के जमावों के स्तरों का प्रागैतिहासिक पुरावशेषों से युक्त अंतर हिमकाल के संचयों के संबंध स्थापित किया जा सकता है। अनुवर्ष स्तरों के कालानुक्रम निर्धारण में आंतरिक साक्ष्यों का भी सहारा लिया जाता है। पिट कार्बनिक औसादन के पुरापराग विश्लेषण आदि के द्वारा अनुवर्ष स्तरों के संचय का कालक्रम निश्चित करना संभव है। कालानुक्रम में प्रामाणिकता के लिए दोनों पद्धतियों का आश्रय लिया जाता है। स्कैंडिनेविया क्षेत्र की झीलों के अनुवर्ष स्तरों के अध्ययन पर उच्च प्रातिनूतन काल एवं नूतन काल के कालक्रम का निर्धारण किया गया है। दे गियर पृष्ठ संख्या 125 ने प्रातिनूतन काल के समाप्ति की तिथि लगभग 7912 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। रेडियो कार्बन अनेक तिथियों से परिलक्षित होता है कि प्रातिनूतन की समाप्ति की तिथि लगभग 11000 बीपी मानी जा सकती है। एच गुडविन ने प्रातिनूतन का अंत 8300 ईसा पूर्व माना है। इस प्रकार अनुवर्ष स्तरों के विश्लेषण से ज्ञात तिथि की परोक्ष रूप से पुष्टि होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत सरल विधि होते हुए भी इसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। विश्व के बहुत बड़े भूभाग में हिमायन नहीं हुआ है, इसलिए इन क्षेत्रों में अनुवर्ष स्तरों के जमाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्कैंडिनेविया के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अनुवर्ष स्तरों के संचय का क्रम निर्धारण आसानी से संभव नहीं है। अर्नेस्ट अंतेब्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुवर्ष स्तरों का विश्लेषण करके कालानुक्रम निर्धारण का सराहनीय प्रयास किया था, लेकिन इन निष्कर्षों से अनेक विद्वान सहमत नहीं है। बाल्टिक सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों और दक्षिण अमेरिका के कतिपय भूभागों में अनुवर्ष स्तरों के विश्लेषण के आधार पर तिथि निर्धारण किया गया है। वृक्ष वलय कालानुक्रम का उपयोग पुरातत्व में निरपेक्ष तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका महत्व संप्रति विशेष रूप से बढ़ गया है। वृक्ष वलय कालानुक्रम केवल निरपेक्ष कालक्रम के लिए ही उपादेय नहीं है, अपितु रेडियो कार्बन तिथियों की त्रुटियों के परिमार्जन के लिए भी विशेष उपयोगी है। कालक्रम निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में इस प्रणाली को ए.ई. डगलस ने सन 1901 से 1913 के मध्य में विकसित किया था। डगलस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत के रेड इंडियंस के प्रागैतिहासिक पुरावशेष के कालानुक्रम निर्धारण के लिए कास्ट अवशेषों के अध्ययन के लिए वृक्ष वलय कालानुक्रम का सहारा लिया था। समशीतोष्ण गतिबंध में उगने वाले वृक्षों में प्रतिवर्ष एक वलय का सामान्यतः निर्माण होता है। वार्षिक नवीन वलय का निर्माण एधा कॉम्बियम के द्वारा होता है। वृक्ष के पुराने काष्ट एवं त्वचा के मध्य में एधा विद्यमान रहता है। वसंत ऋतु अथवा अभीष्ट वृद्धि काल में वृक्ष एधा या अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएं सेल्स उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म अथवा वर्षा काल आते आते कोशिकाओं का आकार छोटा एवं भित्तियां अपेक्षाकृत मोटी हो जाती हैं। प्रत्येक वृद्धि काल के समाप्त होते होते वलय का निर्माण अचानक समाप्त हो जाता है। प्रत्येक वलय का इस प्रकार आरंभ एवं अंत सुस्पष्ट होता है। प्रत्येक वलय एक दूसरे के आकार प्रकार की दृष्टि से भिन्न होती है। अगले वृद्धि काल के प्रारंभ होने पर उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार हरे भरे पेड़ों में उनके पूरे पृष्ठ संख्या 126 जीवन काल तक वलयों का निर्माण होता रहता है। एक क्षेत्र के समकालिक वृक्षों में निर्मित वलयों में अत्यधिक समानता होती है। वलय क्रमों की समरूपता के आधार पर उन्हें समकालिक माना जा सकता है। ताजे एवं सूखे दोनों ही प्रकार के काष्ठों के वलयों की गणना करके तिथि निर्धारण किया जा सकता है। इस विधि से लगभग 2-3 हजार वर्षों तक का कालक्रम सामान्यतः आसानी से निश्चित किया जा सकता है। एशिया और यूरोप में ये तिथियां ऐतिहासिक काल की परिधि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में इनका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि वहां पर लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी की समाप्ति के पश्चात ही लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में स्थित प्रागैतिहासिक ग्राम्य बस्तियों के कालक्रम निर्धारण में इस पद्धति का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। वृक्ष वलयों की संगणना के लिए किसी नमूने में जितने अधिक वलय हो उतना ही अच्छा रहता है। कम से कम 60 से लेकर 200 वलयों से युक्त नमूने विशेष उपयुक्त माने जाते हैं। 25-30 से कम वलयों की संगणना संभव नहीं है। प्रयोगशाला में वलयों की गणना करने के पूर्व काष्ठ के नमूने को किसी तेज उस्तरे से छील कर तैयार कर लेना चाहिए अथवा किसी अन्य विधि से चिकना बना लेना चाहिए। इसके बाद गणना करना चाहिए। वलय गणना के कार्य को सरलता के साथ संपन्न करने के लिए नमूने में अंतिम वलय हो तो ज्यादा अच्छा है। चित्र 5, सिकोया जिगैटिया वृक्ष, पृष्ठ संख्या 127। वृक्ष वलय संगणना में भी अनेक व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक कठिनाइयां हैं। वृक्षों की आयु, जलवायु की शुष्कता एवं आर्द्रता आदि का प्रस्ताव वलयों के निर्माण की प्रक्रिया में पड़ता है। पुराने पेड़ों में अपेक्षाकृत सकरे आकार के वलयों का निर्माण होने लगता है। दीर्घकालिक शुष्कता के फलस्वरूप भी पतले आकार के वलय बनते हैं। विस्तृत आर्द्रकाल के परिणाम स्वरूप वलयों का आकार बड़ा एवं मोटा हो जाता है। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र के वृक्षों के वलयों के आकार प्रकार में भिन्नता के कारण वलयों के तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतीत काल में सर्वत्र लकड़ी का प्रयोग मकान आदि के निर्माण में नहीं होता था। इसके अतिरिक्त किसी सहतीर, बीम एवं चौखट आदि का मकान बनाने में अनेक बार प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में जो तिथि ज्ञात होगी वह उसके काटने के समय की होगी। यह तिथि उसके प्रयोग काल की नहीं हो सकती है। नवीनतम अनुसंधानों एवं शोधों से ऐसा संकेत मिले हैं कि रेडियो कार्बन तिथियों में संभवतः कुछ संशोधन की आवश्यकता है। रेडियो कार्बन तिथियों की तुलना वृक्ष वलय संगणना से करने पर दोनों कालानुक्रमों में अपसारण दिखलाई पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में ब्रिशल, कोन, पाइन आदि कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी आयु लगभग 4-5 हजार वर्ष तक होती है। इन वृक्षों के कुंदे लॉक्स काटकर इनके वलयों की संगणना के द्वारा वृक्ष वलय कालानुक्रम से तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन्हीं कुंदों का जब रेडियो कार्बन विधि से तिथिकरण किया गया तो इन दोनों विधियों से ज्ञात तिथियों में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर हुआ। इन शोधों के फलस्वरूप रेडियो कार्बन तिथियों की त्रुटियों में संशोधन एवं परिष्कार के हेतु कतिपय सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली निरपेक्ष कालानुक्रम निर्धारण में रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली का विशिष्ट महत्व है। रेडियो कार्बन 14 तिथि प्रणाली को निरपेक्ष तिथि विधि के भौतिक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पुरातात्विक कालानुक्रम के निर्धारण में इस तिथि के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेत्ता विलियर्ड एफ लीवी को रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम सन 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा किया था। तब से लेकर आज तक इस विधि में निरंतर परिष्कार एवं सुधार होते रहे हैं। ईसी एंडरसन, आजे आर्नल्ड तथा ई एच ई स्वेस आदि विद्वानों का इसके परिष्कार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य से यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल स्तरों में अत्यंत शक्तिशाली किरणों का परस्पर निरंतर आघात होता रहता है। अंतरिक्ष में होने वाले इस आघात को अंतरिक्षीय विकिरण, पृष्ठ संख्या 128, कॉस्मिक रेडिएशन के नाम से संबोधित किया जाता है। अंतरिक्ष की उन किरणों का टकराव जब पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित विभिन्न परमाणुओं से होता है तो इसके फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण परमाणविक प्रतिक्रियाएं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती है। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं का अनेक छोटे छोटे कणों में विखंडित होना रेडियो कार्बन के निर्माण की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। उन खंडित कणों से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। इन न्यूट्रॉनों के नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक से टकराने के फलस्वरूप कार्बन 14 की उत्पत्ति होती है। वायुमंडल में विद्यमान सामान्य कार्बन में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको कार्बन 12 कहा जाता है। सामान्य कार्बन रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव नहीं होता है। सामान्य कार्बन 12 के कार्बन 13 तथा कार्बन 14 दो समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। इनमें कार्बन 13 भी रेडियोधर्मी नहीं है। वातावरण में कार्बन की मात्रा का लगभग 99% कार्बन 12 होता है। कार्बन 14 की अत्यंत अल्प मात्रा होती है। कार्बन 14 रेडियोधर्मी है। प्राकृतिक तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्वयं विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न करते हैं। कार्बन 14 इसी कोटि का तत्व है, इसीलिए इसको रेडियो कार्बन के नाम से संबोधित किया जाता है। यह कार्बन 12 का अत्यंत दुर्लभ समस्थानिक है। कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक ही होती है किंतु परमाणु भार पृथक पृथक होता है, वे अपने मुख्य तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। रेडियो कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 है और परमाणु भार एटॉमिक वेट 14 है। वायुमंडल में कार्बन तथा ऑक्सीजन के योग से कार्बन 12 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पुनः ये दोनों सम्मिलित रूप से वायुमंडल में प्रसरित होते हैं। पृथ्वी के विभिन्न जैविक पदार्थ इन्हें कार्बन चक्र के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पति जगत प्रकाश संश्लेषण से पशु जगत एवं मानव समुदाय भोजन के द्वारा वायुमंडल के से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। स्थलीय प्राणियों के अतिरिक्त सामुद्रिक प्राणियों में भी इसका वितरण होता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कार्बन 12 तथा कार्बन 14 सभी जैविक पदार्थों में प्रविष्ट हो जाते हैं। रेडियोधर्मी होने के कारण कार्बन 14 का धीरे धीरे विघटन होता रहता है। यह विघटन पूर्णतया ज्ञात एक निश्चित दर से होता है। यह विघटन उन सभी स्थानों तथा जैविक पदार्थों में होता है जहां कार्बन 14 विद्यमान है, जैसे वायुमंडल, वनस्पति एवं प्राणी जगत आदि। यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि विघटन का यह कार्य जीवित एवं निर्जीव दोनों अवस्थाओं में समान रूप से होता है। रेडियोधर्मी विघटन द्वारा कार्बन 14 के क्षय की पूर्ति इसकी निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर जीवित अवस्था में होती रहती है। इस प्रकार इसका संतुलन सदैव समान बना रहता है। इस तथ्य के आधार पर यह धारणा व्यक्त की गई है कि पृष्ठ संख्या 129 कार्बन 12 तथा कार्बन 14 के अनुपात में जब तक कोई पदार्थ जीवित रहता है कभी कोई व्यतिक्रम नहीं होता है। जैविक पदार्थ सदैव एक निश्चित अनुपात में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 को सम्मिलित रूप से ग्रहण करते हैं। जैविक पदार्थों की मृत्यु के पश्चात उसमें नवीन पदार्थ कार्बन 14 ग्रहण करने की क्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में उसका केवल विघटन ही होता है। इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि उस स्थिति में भी कार्बन 12 की मात्रा पूर्वत स्थिर रहती है, जिसके फलस्वरूप दोनों के अनुपात के संतुलन में परिवर्तन आने लगता है। रेडियो कार्बन 14 तिथि निर्धारण के लिए नीचे लिखे हुए तीन तथ्यों का निर्धारण परम आवश्यक है। एक, कार्बन 14 का अर्ध जीवन। दो, किसी नमूने में कार्बन 14 की मूल मात्रा। तीन, उस नमूने में अवशिष्ट कार्बन 14 की मात्रा। वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा रेडियो कार्बन 14 के अर्ध जीवन हाल्फ लाइफ का समय मान निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबद्ध रखता है। यह एक आधारभूत तथ्य है कि कार्बन 14 का एक निश्चित दर से निरंतर विघटन होता रहता है। विघटन की दर ज्ञात है। सामान्यतः लगभग 5500 वर्षों में कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है। अपने गहन अनुसंधान के आधार पर विलियर्ड एफ लिवी ने कार्बन 14 के अर्धभाग के विघटन का समय मान 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष निर्धारित किया है। कालांतर में सन 1962 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पंचम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5580 प्लस माइनस 30 वर्ष के अर्ध जीवन के समय मान को स्वीकार किया गया है। एच गुडविन नामक विद्वान ने रेडियो कार्बन के अर्ध जीवन के समय मान को परिष्कृत एवं परिमार्जित करके 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष निर्धारित किया है। यहाँ पर अर्ध जीवन के संदर्भ में विघटन प्रक्रिया की विशेष व्याख्या आवश्यक है। यह विघटन घातीय सिद्धांत से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन 14 की मात्रा प्रारंभ में जो भी हो उसके अर्ध भाग के विघटन में सदैव एक निश्चित समय लगता है, अर्थात 5568 तथा 5730 वर्ष। उदाहरणार्थ यदि किसी कार्बन 14 इकाई की मात्रा 20 ग्राम है तो इसके 10 ग्राम के विघटन में 5568 वर्ष और पुनः 5 ग्राम के विघटन में 5568 वर्ष का समय लगेगा। रेडियो कार्बन के अर्ध जीवन के विघटन की यह नियमितता रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के लिए निर्णायक है। अर्ध जीवन की अवधि का निर्धारण इस विधि के सैद्धांतिक पक्ष की एक महत्वपूर्ण धारणा है। किसी नमूने में कार्बन 14 की मूल मात्रा इस धारणा पर आधारित है कि सभी जैविक पदार्थों की जीवित अवस्था में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 का अनुपात पृष्ठ संख्या 130 सदैव समान रहता है। कार्बन 12 का चूंकि कभी विघटन नहीं होता है अतएव इसी आधार पर उस नमूने में कार्बन 14 की मूल मात्रा निर्धारित की जाती है। किसी नमूने में कार्बन 14 के शेष भाग का निर्धारण रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली का एक निर्णायक पक्ष है। यह कार्य प्रयोगशाला में विशेष तकनीक के द्वारा किया जाता है। लिबी ने कार्बनिक पदार्थ को ठोस कार्बन में परिवर्तित करके गीगर काउंटर की सहायता से रेडियो कार्बन की गणना की पद्धति को विकसित किया था। इसको स्क्रीन वॉल पद्धति कहा जाता है। ठोस कार्बन विधि में निक्षेप फॉलआउट तथा रेडियोधर्मी अन्य उत्पादों उपोत्पादों बाई प्रोडक्ट्स में से संदूषण की प्रबल संभावना के कारण सन 1955 से रेडियो कार्बन की तरल गैस में बदलकर गणना करने की विधि ने ठोस कार्बन विधि का स्थान ले लिया है। विश्व की अधिकांश रेडियो कार्बन प्रयोगशालाओं ने अब तरल विधि को अपना लिया है। कुछ प्रयोगशालाएं रेडियो कार्बन 14 को कार्बन डाइऑक्साइड तथा एसिटिलीन या मीथेन गैस में परिवर्तित करने के बाद गीगर मुलर संगणक से गणना करती हैं। अन्य प्रयोगशालाएं रेडियो कार्बन 14 को तरल अवस्था में बदलकर स्फुरण मापी या सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से गणना करती है। मीथेन गैस में बदलकर गणना करने की पद्धति अधिक लोकप्रिय हो रही है। कार्बन 14 के शेष भाग के निर्धारण तथा अर्ध जीवन की धारणा में से इस तथ्य की उपलब्धि होती है कि अमुक नमूने से कार्बन 14 की मूल मात्रा के विघटन में कितना समय व्यतीत हुआ है। यही उस नमूने की मृत्यु तिथि होती है। उदाहरणार्थ यदि किसी नमूने में कार्बन 14 की शेष मात्रा मूल मात्रा की 1/4 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके विघटन में 2 अर्ध जीवन का समय व्यतीत हुआ, अर्थात उस नमूने की मृत्यु के पश्चात लगभग 11,136 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। यही उस नमूने की तिथि है। इस प्रकार प्राप्त तिथि को अद्यपूर्व अथवा बिफोर प्रेजेंट द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस वर्तमान का माप वर्ष सन 1950 ईस्वी को माना जाता है। अतः बीपी युक्त तिथियों को बीसी में बदलने के लिए बीपी की तिथि में से 1950 घटाया जाता है। समस्त रेडियो कार्बन 14 तिथियों को धन अथवा ऋण के चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, जिसे सांख्यिकी की भाषा में मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन के नाम से जाना जाता है। मानक विचलन सांख्यिकीय संकल्पना को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में मानक विचलन को गणना संबंधी विकार भी कहते हैं, कहा जा सकता है। यह मात्र संभावना के स्तर का द्योतक है। इस संबंध में कुछ सामान्य भ्रांतियां हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। मानक चिंतन युक्त किसी रेडियोकार्बन 14 तिथि का यह अर्थ नहीं है कि वास्तविक तिथि किसी दी हुई तिथि की पृष्ठ संख्या 131 दोनों सीमाओं के बीच अवश्य ही होगी। उदाहरण के लिए 1500 प्लस माइनस 120 की तिथि में एक मानक विचलन है, इसलिए इसके 68% सही होने की संभावना है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वास्तविक तिथि 120 वर्ष के बीच अथवा 1620 और 1380 के बीच में हो सकती है। यदि मानक विचलन को द्विगुणित कर दिया जाए तो सही तिथि की संभावना 95% हो जाती है, अर्थात प्लस 15,000 प्लस माइनस 240 में सही तिथि की संभावना अधिक है। रेडियो कार्बन 14 के परीक्षण के लिए लकड़ी का कोयला, शुष्क काष्ठ, छाल, पत्ती, हड्डी, सिंग, हाथी दांत, बाल, सीप, घोंगे, कंकड़, कार्बोनेट, जले हुए अन्न के दाने आदि अन्य जैविक पदार्थ, कपड़ा, दलदली मिट्टी, पीत तथा अक्षार जल आदि विशेष उपयुक्त हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अपेक्षाकृत कम आयु वाले जैविक पदार्थ के नमूने विश्वसनीय तिथियां प्रदान करते हैं। अधिक आयु वाले नमूने से प्राप्त तिथि में उस नमूने की अपनी आयु के सम्मिलित होने के कारण पुरातात्विक धरातल का वास्तविक तिथि निर्धारण नहीं हो पाता है। लकड़ी के कोयले तथा सूखी लकड़ी के नमूनों के विश्लेषण से अधिक विश्वसनीय परिणाम मिलने की संभावना है। हड्डियों, घोंघों, सीप आदि में त्रुटि की संभावना अधिक है। कार्बन 14 तिथि प्रणाली के द्वारा 40,000 वर्ष तक प्राचीन पुरावशेषों का तिथि निर्धारण किया जा सकता है। इससे अधिक प्राचीन पुरावशेषों की तिथियां प्रायः आसानी से नहीं निर्धारित की जा सकती हैं। हेरिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा परिष्कृत विधि के आधार पर एक विशेष पद्धति के द्वारा 70,000 वर्ष तक की प्राचीन वस्तुओं की तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। नीदरलैंड्स की ग्रोनिंजन प्रयोगशाला में ही 40,000 से अधिक तिथियों का निर्धारण संभव है। इससे प्राचीन तिथियां इस विधि के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि 70,000 वर्ष से पूर्व के नमूनों में रेडियोकार्बन तत्व की मात्रा इतनी कम रह जाती है कि उसकी गणना वर्तमान तकनीक के द्वारा संभव नहीं है। पुराविदों को रेडियोकार्बन 14 के विश्लेषण के लिए उपयुक्त वस्तुओं के नमूने अत्यंत सावधानी के साथ एकत्र करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील की साब, छुरियों और चिमटियों का उपयोग नमूनों को इकट्ठा करने के लिए करना चाहिए। खंती में जहां स्तर अस्त व्यस्त न हो तथा पेड़ पौधों की जड़ें आदि न हो, वहीं से नमूनों को इकट्ठा करना चाहिए। किसी टीले के किनारे से इकट्ठा किए गए नमूनों में स्तरों के आपस में मिल जाने की आशंका रहती है। इसी प्रकार नदी के तटवर्ती क्षेत्र से इकट्ठा किए गए नमूनों के भी भूमि के क्षरण तथा कटाव से संदूषित हो जाने की संभावना रहती है। इकट्ठा किए गए नमूनों को प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बों में मुहर बंद करके सील्ड भेजना चाहिए। रेडियो कार्बन प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजने के पूर्व नमूनों को सुरक्षित रखने अथवा सफाई आदि के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 132। प्रत्येक रेडियो कार्बन प्रयोगशाला को भिन्न भिन्न वस्तुएं पृथक पृथक मात्रा में चाहिए, इसलिए नमूना इकट्ठा करने से पूर्व इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेना ठीक होता है। रेडियो कार्बन 14 के परीक्षण के लिए सामान्यतः लकड़ी का कोयला 10 से 20 ग्राम, शुष्क काष्ठ 15 से 30 ग्राम, घोंगे 25 से 100 ग्राम, पीट 10 से 25 ग्राम, हड्डी 25 से 100 ग्राम उपयुक्त मात्रा मानी जा सकती है। रेडियो कार्बन 14 के परीक्षण के लिए अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को विभिन्न वस्तुओं की कम से कम अधोलिखित मात्रा भेजना चाहिए। लकड़ी का कोयला 20 ग्राम, सूखी लकड़ी 25 ग्राम, पिट 40 ग्राम, हड्डियां बोन फॉर कैलिगन 250 ग्राम, सिप सेल कार्बोनेट 200 ग्राम तथा मूंगा कोरल कार्बोनेट 200 ग्राम। पश्चिमी जगत के अधिकांश देशों में रेडियो कार्बन 14 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से नीदरलैंड्स की ग्रोनिंजेन प्रयोगशाला सबसे प्रसिद्ध है। सन 1959 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस ने वार्षिक परिशिष्ट के रूप में रेडियो कार्बन का प्रकाश न प्रारंभ किया, जिसने शीघ्र ही रेडियो कार्बन के नाम से एक स्वतंत्र जर्नल शोध पत्रिका का स्वरूप धारण कर लिया। भारत में सर 1962 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई में रेडियो कार्बन प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तथा हाल ही में लखनऊ स्थित बीरबल साहनी संस्थान में रेडियो कार्बन 14 के विश्लेषण की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय प्रयोगशालाओं से उपलब्ध तिथियां करेंट साइंस नामक शोध पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होती है। रेडियो कार्बन 14 के अर्ध जीवन के समयमान के निर्धारण में किंचित अनिश्चितता, वातावरण में कार्बन की मात्रा में उतार चढ़ाव, पृथ्वी की पूरा चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय दिशा में परिवर्तन आदि के कारण रेडियो कार्बन तिथियों में त्रुटि की संभावना रहती है। रेडियो कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रणाली कई पूर्व धारणाओं पर आधारित है। रेडियो कार्बन 14 के अर्ध जीवन के समयमान के संबंध में पूर्ण एकरूपता का अभाव है। अर्ध जीवन ज्ञात करने में यदि कुछ प्रतिशत की त्रुटि हो जाए तो उतने प्रतिशत की अशुद्धि की संभावना किसी पुरावशेष की तिथि के निर्धारण में रहती है। विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयुक्त रेडियो कार्बन के अर्ध जीवन के समयमान के संबंध में एकरूपता नहीं है रेडियो कार्बन तिथियों के साथ, इसलिए प्रयोगशाला का नाम एवं अर्ध जीवन का प्रायः उल्लेख करने की परिपाटी है। रेडियो कार्बन तिथि के आविष्कारक W.F. Leeby के अनुसार वातावरण में कार्बन की मात्रा में सर्वत्र सदैव एक रूपता रहती है। यह अवधारणा पूर्णतः सही नहीं है। कतिपय विद्वानों का विचार है कि सौर विकिरण में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप वायुमंडल में रेडियो कार्बन की मात्रा में परिवर्तन हुए हैं। पृष्ठ संख्या 133। 20वीं शताब्दी के विगत 40 वर्षों में परमाणु तथा हाइड्रोजन बमों के परीक्षणात्मक विस्फोटों, कोयले और पेट्रोलियम तेल के ईंधन के रूप में उद्योगों आदि में खपत के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में लगभग 25% की वृद्धि हो गई है। हरे भरे पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं में कार्बन 12 एवं रेडियो कार्बन 14 की मात्रा का अनुपात वही नहीं है जो वायुमंडल में इन दोनों की मात्रा का अनुपात है। चूने से युक्त मिट्टी में स्थित पेड़ पौधों के कैल्शियम कार्बोनेट के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें रेडियो कार्बन 14 की मात्रा में बहुत कम होने की संभावना है। स्तरों में प्रविष्ट होकर रेडियो कार्बन 14 के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले पुरावशेषों के नमूनों को संदूषित कर देते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव रेडियो कार्बन 14 तिथियों के निर्धारण पर पड़ता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल में पहुंचने वाले सौर विकिरण को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा की तुलना में उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र में अंतर के परिणाम स्वरूप अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। रेडियो कार्बन परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने में त्रुटि होने के परिणाम स्वरूप तिथियों में अशुद्धि की संभावना रहती है। ह्यूमिक एसिड जल के माध्यम से किसी पुरास्थल के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करके संदूषण उत्पन्न कर देती है। हरे भरे पेड़ पौधों की पतली पतली जड़ें रेडियो कार्बन के नमूनों के संपर्क में आकर उनमें संदूषण पैदा करने में सहायक होती है। रेडियो कार्बन नमूनों की प्रयोगशाला में सफाई एवं समस्थानिक संवर्धन की प्रक्रिया में विभिन्नता के कारण तिथियों में अंतर आ सकता है। विभिन्न प्रयोगशाला विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा गणना में प्रयुक्त यंत्रों के अल्पतमांकों में पृथकता होने के कारण रेडियो कार्बन की गणना में अंतर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आकलन संबंधी त्रुटियों से भी गणना प्रभावित हो सकती है। वृक्ष वलय कालानुक्रम से ज्ञात तिथियों के साथ रेडियो कार्बन 14 तिथियों की तुलना करने पर दोनों में अपसारण दिखलाई पड़ता है। 20वीं शताब्दी ईस्वी के 7वें दशक में सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। सन 1963 में W.F. लीबी ने रेडियो कार्बन तिथियों की तुलना मिस्र के प्राचीन इतिहास के ज्ञात कालानुक्रम की संवत्सर की तिथियों से किया और यह पाया कि दोनों में जितनी एकरूपता होनी चाहिए उतनी नहीं है। ईसा पूर्व 2000 से आगे की जो तिथियां हैं उनमें लगभग 5% त्रुटि दिखलाई पड़ती है। सन 1955 तक 2000 ईसा पूर्व से पुरानी वृक्ष वलय कालानुक्रम की तिथियां उपलब्ध नहीं थी। उपलब्ध तिथियां सिकोया जिगेंटिया नामक वृक्ष के नमूनों पर आधारित थी। एरिजोना विश्वविद्यालय की वृक्ष वलय प्रयोगशाला के एडमंड सुलमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत पृष्ठ संख्या 134 के पर्वतों पर उगने वाले ब्रिशल कोन पाइन के नमूनों के आधार पर 2000 वर्ष से पुरानी तिथियां वृक्ष वलय विधि से ज्ञात किया। ब्रिशल कोन पाइन नामक वृक्ष की आयु लगभग 4-5 हजार वर्ष तक होती है। सन 1966 में वृक्ष वलय संगणना से प्राप्त तिथियों के आधार पर रेडियो कार्बन तिथि में संशोधन एवं परिष्कार सुझाए गए। विभिन्न विद्वानों एवं प्रयोगशालाओं ने रेडियो कार्बन तिथियों की त्रुटियों के परिमार्जन के लिए कई सुझाव दिए हैं, लेकिन इन सुझावों में से भी एक रूपता नहीं है। इस बात से सभी प्रयोगशालाएं सहमत हैं कि 2000 ईसा पूर्व से प्राचीन जो रेडियो कार्बन तिथियां हैं वे अपेक्षाकृत नवीन हैं। रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली कतिपय संभावित त्रुटियों के होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण निरपेक्ष तिथि निर्धारण की विधि है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि एकाकी और असंगत तिथियां बहुत विश्वसनीय नहीं है। किसी पुरास्थल के विभिन्न स्तरों से अनेक सुसंगत तिथियों के होने पर ही कालानुक्रम के संदर्भ में कोई सार्थक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक ही स्तर से कई रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हो तो अधिक अच्छा है। यह तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि रेडियो कार्बन तिथियां किसी संवत्सर की तिथियां नहीं हैं, बल्कि संभावित सांख्यिकीय तिथियां हैं। इसलिए पुराविदों को रेडियो कार्बन तिथियों का उपयोग अत्यंत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण विधि भी रेडियो कार्बन विधि की तरह रेडियो एक्टिव तत्वों के विश्लेषण पर आधारित एक निरपेक्ष तिथि विधि है। पोटेशियम आर्गन विधि के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय CFV वाइजशेकर को है, जिसने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में वातावरण में आर्गन 40 के समाहार के संबंध में अनुसंधान कार्य किया था। इस समय तिथि निर्धारण के विषय में इसकी संभावना की कोई जानकारी नहीं थी। सन 1950 के पश्चात W. जेंटवर ने निरपेक्ष तिथि निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया। 60-70 के दशक से पुरातत्व संबंधी पुरास्थलों की तिथियों के निर्धारण में इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा। J.F. एवर्जी एवं G.H. कर्टिस ने सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग तंजानिया में स्थित ओल्डुवाई गाज के सुप्रसिद्ध प्रागैतिहासिक पुरास्थल के विभिन्न स्तरों के तिथि निर्धारण के लिए किया था। अभी तक ज्ञात सभी विधियों में प्राचीनतम तिथि निर्धारण के लिए यह विधि विशेष महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो कार्बन के द्वारा सामान्यतः 40-50 हजार वर्ष तक की तिथियों का निर्धारण किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 70 हजार वर्ष पूर्व तक की भी रेडियो कार्बन तिथियां निकाली जा सकती हैं। इससे पृष्ठ संख्या 135 अधिक समय के परिप्रेक्ष्य में रेडियो कार्बन विधि की गति नहीं है। पोटेशियम आर्गन विधि में 30,000 वर्ष से अधिक प्राचीन पुरावशेषों का ही तिथि निर्धारण संभव है। इस विधि की अंतिम सीमा 30 करोड़ वर्ष से अधिक है। इसका अर्ध जीवन 13 करोड़ वर्ष है। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी के बाह्य कलेवर में अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राय सभी खनिज पदार्थों में यह पाया जाता है। पोटेशियम का निर्माण 3 समस्थानिकों से मिलकर हुआ है। के 39 लगभग 92.2%, के 41 6.8% और के 40 0.0811% रहते हैं। के 40 पोटेशियम का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। के 40 के लगभग 89% का विघटन कैल्शियम 40 में तथा लगभग 12% का आर्गन 40 में होता है। आर्गन 40 एक निष्क्रिय गैस है जो विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी मूल वस्तु से निकल जाती है। आग्नेय पत्थरों के निर्माण में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें यह आर्गन 40 गैस पूरी तरह निकल जाती है। इस विधि के द्वारा तिथि निर्धारण के लिए ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन आदि विशेष उपयुक्त हैं। इस विधि से निर्धारित की गई तिथियों में वे तिथियां अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं जो एक ही वस्तु के दो भिन्न नमूनों से ज्ञात हुई हो। यदि वह नमूना ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है और उसमें आर्गन गैस का अधिक विघटन नहीं हुआ है तथा वह अपने मूल स्थान पर ही है तो इसके विश्लेषण से प्राप्त तिथियां अधिक मान्य एवं प्रामाणिक मानी जा सकती हैं। विद्वानों की धारणा है कि इस विधि से प्राप्त तिथियों में लगभग 10% से अधिक त्रुटि की संभावना नहीं है। इस विधि की प्रमुख कमी यह है कि सभी स्थलों के नमूनों में पोटेशियम 40 का वितरण सामान्य नहीं होता है। अतः यह संभव है कि जिस नमूने का परीक्षण किया गया है उसमें पोटेशियम का अवशोषण कम अथवा अधिक हो। दूसरी कठिनाई यह है कि जिस विधि से वातावरण की ऑर्गन को अलग करते हैं उसमें रेडियो एक्टिव ऑर्गन 40 की क्षति हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्राप्त तिथियों में अंतर हो सकता है। इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित ओल्डुवाई गाज के प्रागैतिहासिक पुरावास स्थलों के विभिन्न स्तरों की तिथियों के निर्धारण के लिए किया गया है। ओल्डुवाई गाज के प्रथम स्तर बेट वन की तिथि 19 लाख वर्ष तथा उसके ऊपरी स्तर की तिथि 15 लाख वर्ष इस विधि के द्वारा निर्धारित की गई है। केन्या में स्थित तुर्काना झील के किनारे स्थित स्तरों की तिथियां लगभग 26 लाख ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इस प्रकार इस विधि की प्रागैतिहासिक कालानुक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। पृष्ठ संख्या 136। उष्मा दीप्ति मृदभांडों एवं मृदभांड सदृश जिन अन्य पुरावशेषों की अतीत में पकाया गया था उनमें कालानुक्रम निर्धारण की उष्मा दीप्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। नवपाषाणिक काल से संबंधित पुरास्थलों से प्राय मृदभांडों का न्यूनाधिक मात्रा में मिलना प्रारंभ हो जाता है और परवर्ती सांस्कृतिक कालों में इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक तक मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की निर्माण विधि बनावट तथा अलंकरण अभिप्राय आदि के अध्ययन के आधार पर पुरातत्ववेत्ता सापेक्ष कालानुक्रम का निर्धारण किया करते थे। 16वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हुआ था कि यदि हीरे को उच्च तापक्रम में तपाया जाए तो उससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं जिन्हें अंधेरे में देखा जा सकता है। भौतिक विज्ञान में इस तथ्य का उपयोग सर्वप्रथम फेरिक्टन डेनियल ने सन 1953 में किया था। सन 1960 में जीसी कनेडी और एल नॉफ नाम के वैज्ञानिकों ने मृदभांडों के कालानुक्रम से संबंधित उष्मा दीप्ति की इस नवीन विधि की संभावनाओं की ओर पुराविदों का ध्यान आकर्षित किया। उष्मा दीप्ति का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि मृदभांडों एवं एतत् सदृश अन्य वस्तुएं जैसे अलाव या चूल्हे, हेयर की मिट्टी, ईंटें, कांच तथा कांचित वस्तुएं जिन्हें लगभग 400-500 सेंटीग्रेड से 12,000 सेंटीग्रेड के उच्च तापमान में अतीत में पकाया गया था, उनकी ऊष्मादीप्ति की मात्रा को माप कर कालानुक्रम निर्धारित किया जा सकता है। किसी पदार्थ को तपाने पर ताप के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्मादीप्ति कहा जाता है। उच्च तापक्रम 500 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाए जाने के फलस्वरूप निर्माण के समय मृत पात्रादि में ऊष्मादीप्ति की मात्रा शून्य होती है। मृत भांड के किसी टुकड़े में ऊष्मादीप्ति की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उक्त टुकड़े को आवा में पकाए जाने से लेकर अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त मिट्टी अधिकांशतः काफी पुरानी होती है और इनमें विद्यमान खनिजों आदि में ऊष्मादीप्ति पूंजीभूत रूप में विद्यमान रहती है। मृदभांडों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में विद्यमान खनिजों के प्राकृतिक कणों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां इम्प्योरिटीज में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त अत्यल्प संख्या में पोटेशियम 40, थोरियम तथा यूरेनियम के प्राकृतिक रूप में रेडियो एक्टिव तत्व भी मिट्टी में विद्यमान रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्फा तथा बीटा का कण पार्टिकल्स मृत भांड के पात्र खंड में से निरंतर निकलते रहते हैं। इनके अतिरिक्त यदि वह वस्तु जमीन में दबी हुई हो तो आसपास के परिवेश में बीटा तथा गामा कणों का विकिरण उक्त वस्तु पर होता रहता है। इनके अलावा पृष्ठ संख्या 137 अंतरिक्ष किरणों द्वारा भी उस वस्तु का विकिरण होता है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप में मिले हुए खनिजों में विद्यमान रेडियो एक्टिव तत्व आयनीकृत विकिरण के सतत स्रोत हैं। जब रेडियो सक्रियता से आवेशित अल्फा, गामा और बीटा के परमाणु किसी वस्तु का भेदन करते हैं तब आयनीकरण होता है। विद्युत आवेशित ये कण पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। इनके विकिरण से मृत पात्रों में विद्यमान अणुओं में कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेशित ये कण अपनी ऊर्जा के कुछ अंश के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को परस्पर संगठित होने की क्षमता प्रदान करते हैं और अणुओं से अलग होकर क्रिस्टलों के अंदर घुसकर निकलने की क्षमता प्रदान करते हैं। मृदभांड के टुकड़ों के जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसे छिद्र या रंध्र होल कहा जाता है। मिट्टी में मिले खनिज कणों की अशुद्धियों से निर्मित रंध्रों को ट्रैप या वारक कहा जाता है, क्योंकि कतिपय गतिशील इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन इन रंध्रों में आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे तैसे समय व्यतीत होता है, उस वस्तु में विकिरण की मात्रा बढ़ने लगती है। कोई मृदभांड जितना ही पुराना होता है उसमें आयनीकरण के फलस्वरूप उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों के आबद्ध होने की संभावना होती है। जब मृदभांड खंड को लगभग 500 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तपाया जाता है तब उसमें फंसे हुए इलेक्ट्रॉन उन्मुक्त होकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निष्क्रमण स्फुरण ग्लो के रूप में होता है। इसी क्रिया को ऊष्मादीप्ति की संज्ञा दी जाती है। मृदभांड के निर्माण के दौरान जब कुम्भार पात्रों को आवा में उच्च तापक्रम में पकाता है तब मिट्टी के रंध्रों में अनंत काल से जमा हुए सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उस समय मृदभांड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इस प्रकार मृदभांडों में जमा हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दूसरे शब्दों में थर्मोल्यूमिनेसेंस की कुल मात्रा वर्तन के पकने के बाद व्यतीत हुए समय की समानुपाती होती है। प्राचीन मृदभांड के निर्माण में व्यतीत हुए समय को ज्ञात करने के लिए उसे पुनः उच्च तापक्रम 500 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में तपाया जाता है। ऊष्मा के रूप में निकलने वाले प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है। इसे समतुल्य रेडियो विकिरण की मात्रा, एक्विवेलेंट रेडिएशन डोज कहा जाता है। इसी प्रकार उस बर्तन में प्रतिवर्ष पड़ने वाली विकिरण की मात्रा डोज पर ईयर भी ज्ञात कर ली जाती है। कालानुक्रम निर्धारण के अतिरिक्त असली, रियल एवं नकली फेक मृदभांडों की पहचान के लिए भी यह विधि उपयोगी है। अगर किसी मृदभांड में उष्मा दीप्ति की मात्रा का अभाव मिलता है तो उसे बनावट एवं आकार प्रकार की दृष्टि से प्राचीन प्रतीत होते हुए भी हाल ही में निर्मित स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। पृष्ठ संख्या 138। इस विधि में ज्ञात तिथियों में लगभग 10% त्रुटि की संभावना रहती है। उष्मादीप्ति विधि में अनेक त्रुटियों की संभावनाएं हैं। इस विधि के द्वारा प्रामाणिक तिथियों के प्राप्त होने की तभी संभावना है जबकि पकाने के पश्चात मृदभांड में किसी प्रकार का विदूषण न हुआ हो। मिट्टी में दबे रहने के कारण बर्तन के टुकड़ों में रेडियो एक्टिव कणों की संख्या में वृद्धि एवं अंतरिक्ष किरणों के विकिरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रासायनिक अशुद्धियों के कारण तिथि निर्धारण में कठिनाइयां आती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रकार तथा संख्या आदि का भी कालानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। इस विधि से ज्ञात तिथियों का को धन ऋण प्लस माइनस के चिन्हों से मानक विचलन की त्रुटि का परिहार करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है।